थे स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
प्रिय श्रोता नमस्कार, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से जकरिया नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं। इस पुस्तक का मुख्य विषय है मसीह का आगमन, और इस पुस्तक का लेखक स्वयं जकरिया नबी है, जिसके नाम का अर्थ है यहोवा स्मरण करता है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले मन की तैयारी के लिए सुनते हैं एक मधुर गीत।
मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन ईश्वर को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी अगर मान लो यह विश्वास, चले आओ आज ही प्रभु यीशु पास। तुम भी खुशी पाओ, तुम भी शांति पाओ, तुमसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन काली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। यीशु ने निकाली मेरे मन की गंदगी, देखो मैंने आज पाई नई जिंदगी। मैंने खुशी पाई, मैंने शांति पाई, मुझसे जो कोई भी न छीन ले सके। हाँ, मैंने अपना मन यीशु को दे, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मन यीशु को दे दिया, आज से मैं उसके लिए। I'm not afraid. दे दिया,
शिप दे दिया,
आज से मैं उसके लिए जीऊंगा। मैंने अपना मैंने अपना मैं शिप दे दिया,
शिप दे दिया,
आज से मैं उसके लिए जीऊंगा।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और सामर्थी नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूं और मुझे विश्वास है कि आप सब भी परमेश्वर की दया से कुशल पूर्वक हैं और प्रतिदिन की तरह आज फिर से परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए अपने मित्रों और परिवारों के साथ तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और अपने उन सभी नए मित्रों का भी जो आज पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आप सबको बताना चाहता हूं कि हम सब इन दिनों बाइबल में से जकरिया नामक पुस्तक से अध्ययन कर रहे हैं और इस अध्ययन में हम सब देख रहे हैं कि परमेश्वर का दास जकरिया दर्शन के माध्यम से परमेश्वर की बातों को अपने लोगों तक पहुंचा रहा है। मेरे मित्रों, इससे पहले कि आज हम सब अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगे। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए, इस संगति के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम आपके जीवित और सामर्थ्य वचन का अध्ययन एक साथ मिलकर रेडियो के माध्यम से अलग अलग स्थानों पर बैठ करके भी कर सकते हैं। आज हम जकरिया की पुस्तक से जब अपने अध्ययन को कर रहे हैं, आपसे विनती करते हैं कि आप हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए ताकि जब वे आपके वचन को सुने तो आपका वचन उनके कानों से होकर हृदय तक पहुंचने पाए, उनसे बोलने और बातचीत करने पाए, उन्हें नम्र और दीन बनाने पाए, उनके बुराइयों से उन्हें छुटकारा देने पाए, वे सत्यता को पहचानने पाए। हाँ प्रभु, आपका वचन सामर्थी वचन है, प्रत्येक के जीवन से आप बातचीत करें। हमारी विनती है उन भाई बहनों के लिए भी जो इस समय बीमार अवस्था में हैं, निराश हैं, परेशान हैं, चिंता और तनाव में हैं, पारिवारिक जीवन से परेशान हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप इन सभी श्रोता भाई बहनों के जीवन में कार्य करें, उन्हें शांति दें, छुटकारा दें, आनंद दें, समाधान दें। हाँ पिता परमेश्वर, ये सब कुछ आपके द्वारा संभव है। आज के अध्ययन पर भी हम आपकी आशीष चाहते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ते हुए जकरिया नबी की पुस्तक उसके 5 अध्याय से अध्ययन को आरंभ करेंगे। अब हम 2 ऐसे दर्शनों का अध्ययन करेंगे जो प्रतीकात्मक तो है परंतु दर्शनों की इस श्रृंखला में अति असामान्य है। पहला दर्शन है उड़ते हुए पत्र का दर्शन, जो दर्शनों के अर्थ में एक सुस्पष्ट विभाजन है। पहले 2 अध्यायों में परमेश्वर अति स्पष्ट करता है कि वह इसराइल के सब बैरियों का नाश करेगा और इसराइल याजकों का एक समाज होगा। परमेश्वर कहता है कि उन्हें मिस्र से निकालते समय परमेश्वर की यही इच्छा थी, परंतु उनके पाप के कारण केवल एक ही गोत्र लेवी याजक होने के लिए चुना गया था। तदुपरांत यहोशू और शैतान के दर्शन में स्पष्ट किया गया था कि इसराइल को सबसे पहले शुद्ध होने की आवश्यकता थी। दूसरा दर्शन था शाख और 7 आंख वाले पत्थर का, जो भविष्य के प्रभु राज से संबंधित था। जब परमेश्वर उनका शोधन करके उन्हें संसार की ज्योति बनाएगा, दीपदान जिसमें दीपकों को जैतून के वृक्ष से तेल दिया जा रहा था, तेल पवित्र आत्मा का प्रतीक था, वे पवित्र आत्मा के सामर्थ में गवाह होंगे। मेरे मित्रों, यह सब ठीक तो है, परंतु एक प्रश्न उठता है, क्या प्रत्येक इसराइली चुना जाएगा? पाप में रहने वाला प्रत्येक इसराइली भी चुना जाएगा? हम इस दर्शन में देखेंगे कि जो आज्ञा नहीं मानते उन पर परमेश्वर का दंड आएगा। जी हां, परमेश्वर संपूर्ण संसार का न्याय ऐसे ही करेगा, चाहे कोई भी क्यों ना हो। यद्यपि ये दर्शन स्थानीय है, परंतु इसका अभिप्राय विश्वव्यापी है। यह वैश्विक सुसमाचार है जो पृथ्वी पर परमेश्वर के राज्य की स्थापना की ओर लक्षित है। यह इसराइल के संबंध में परमेश्वर की कही गई बात को अति स्पष्ट करता है। रोमियो की पत्री 9 अध्याय उसके 6 पद में लिखा है, जो इसराइल के वंश हैं, वे सब इसराइली नहीं। जी हां, प्रत्येक इसराइली को परमेश्वर का आज्ञाकारी होना है, उसे शोधन के लिए परमेश्वर का मार्ग अपनाना होगा, जैसा हम देख चुके हैं, और उन्हें मसीह को ग्रहण करना होगा। आज इस पृथ्वी पर हम हर एक मनुष्यों को भी प्रभु यीशु को ग्रहण करना है, क्योंकि प्रेरितों के काम 4 अध्याय के 12 पद में लिखा है, आकाश के नीचे पृथ्वी पर मनुष्यों में प्रभु यीशु के नाम के अलावा और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सकें। अर्थात हमें मसीह को ग्रहण करना होगा। इसराइल के विषय कही गई यह बात कलीसिया के लिए भी सच है। कलीसिया का हर एक सदस्य सच्चा विश्वासी नहीं है। वह दिन आता है जब विश्वासी और अविश्वासी में विभाजन होगा। यह विश्वासियों के उठाए जाने के समय होगा, परंतु इसराइल और अन्य जातियों का बंटवारा तब होगा जब प्रभु यीशु दूसरी बार पृथ्वी पर कदम रखेगा और अपने चुने हुओं को एकत्र करेगा, अर्थात इकट्ठा करेगा। उस दिन न्याय होगा और शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा जाएगा। यह सब यहां इस दृश्य में दिया गया है, दर्शन में दिया गया है। आप यहां देख सकते हैं कि यह जकरिया के युग के परमेश्वर भक्त जनों और हमारे लिए भी है। तो आइए हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे उड़ते हुए पत्र का दर्शन। जकरिया की पुस्तक 5 अध्याय उसके 1 पद में लिखा है, मैंने फिर आंखें उठाई तो क्या देखा कि एक लिखा हुआ पत्र उड़ रहा है। जी हां, यह पत्र परमेश्वर का वचन है, जैसा यहेजकेल नबी की पुस्तक 2 अध्याय उसके 9 से 3 अध्याय के 4 पद में स्पष्ट किया गया है। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात इस पुस्तक को खा, तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूं उसे पचा ले और अपनी अतनियां इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु के तुल्य मीठी लगी। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, तू इसराइल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना। मेरे प्रियो, यहेजकेल को परमेश्वर का वचन पचाकर परमेश्वर की प्रजा को सुनाना था। यह हम प्रचारकों के लिए भी एक महान चित्रण है। हमें परमेश्वर का वचन पचा लेना है। यह हमारे पेट में कड़वा तो लगेगा, परंतु हमारे मुंह में यह शहद के समान मीठा लगेगा, अर्थात जिसे हम सुनाने में आनंद का अनुभव करेंगे। इस उड़ते हुए पत्र की अनेक व्याख्याएं हैं, परंतु जो युगों से चली आ रही व्याख्या है वह है कि यह परमेश्वर का वचन है और विशेष करके 10 आज्ञाएं हैं। जकर्याह 5 उसके 2 पद में आगे लिखा है, दूत ने मुझसे पूछा, तुझे क्या दिखाई पड़ता है? मैंने कहा, मुझे एक लिखा हुआ पत्र उड़ता हुआ दिखाई पड़ता है, जिसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की है। मेरे प्रियो, यहां पर देखिए, उसकी लंबाई 20 हाथ और चौड़ाई 10 हाथ की थी। जकर्याह के युग में घास के पत्ते या चमड़े के बने कुंडली ग्रंथ होते थे, जिनमें पृष्ठ पलटने की अपेक्षा उन्हें एक सिरे से खोला जाता था और दूसरे सिरे पर लपेटा जाता था। परंतु जकर्याह के दर्शन का यह पत्र बहुत बड़ा था, 20 हाथ लंबा, अर्थात 20 × 18 बराबर 360, अर्थात 30 फुट लंबा, और 10 × 18 बराबर 180, अर्थात 15 फुट चौड़ा था। जकर्याह ने उसे पूरा खुला हुआ देखा। इसकी लंबाई चौड़ाई सुलेमान के ओसारे के बराबर थी, जिसे हम पहला राजा की पुस्तक 6 अध्याय उसके 3 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, और भवन के सामने के ओसारे की लंबाई 20 हाथ की थी और ओसारे की चौड़ाई जो भवन के सामने थी वह 10 हाथ की थी। याजक यहीं आकर आराधना करते थे, पर्दे के पीछे तब जाते थे जब उनके पास चढ़ावे का लहू हो, जो केवल महायाजक वर्ष में एक बार करता था। वह वहां लहू द्वारा उद्धार प्राप्त स्थान में होता था। मेरे प्रियो, आज हम भी उद्धार की अवस्था में हैं, जो सोने चांदी या बहुमूल्य पत्थरों से नहीं है, परंतु प्रभु यीशु के बहुमूल्य लहू से है। हम जादू के उड़ने वाले कालीन पर नहीं खड़े हैं। यूहन्ना कहता है 3 अध्याय उसके 14 और 15 पद में, और जिस रीति से मूसा ने जंगल में सांप को ऊंचे पर चढ़ाया, उसी रीति से अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र भी ऊंचे पर चढ़ाया जाए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह अनंत जीवन पाए। जी हाँ, इसी बात को हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय उसके 16 पद में पढ़ते हैं, जहां पर लिखा हुआ है, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे प्रियो, वचन में साफ साफ लिखा है कि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नाश ना हो। यहां पर किसी एक देश, एक भाषा, एक गांव या एक प्रकार के लोगों के बारे में नहीं कहा गया है, क्योंकि परमेश्वर एक जाति, एक देश और एक लोगों से नहीं, परंतु पूरे विश्व से, अपनी सारी सृष्टि से प्रेम करता है। इसलिए वह सबको अवसर देता है, कहता है कि जो कोई भी उस पर विश्वास करेगा वह नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। मेरे मित्रों, क्या आप उस यीशु पर विश्वास करते हैं जो आपको अनंत जीवन दे सकता है, जो आपको अनंत जीवन देने के लिए इस पृथ्वी पर आया और आपके सारे पापों को अपने ऊपर लेकर क्रूस की मृत्यु सही? हम सब के लिए यही आशा है कि हम अनंत जीवन पाने के लिए यीशु के पास आएं। जकर्याह आगे कहता है 5 अध्याय के 3 पद में, तब उसने मुझसे कहा, यह वह शाप है जो इस सारे देश पर पड़ने वाला है, क्योंकि जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा, और जो कोई शपथ खाता है वह उसकी दूसरी ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। मेरे प्रियो, स्पष्ट है कि उस पत्र पर 10 आज्ञाएं लिखी हुई थी। 10 आज्ञाओं के दो भाग थे। पहली 4 आज्ञाएं परमेश्वर से संबंधित थी और शेष 6 आज्ञाएं मनुष्यों के आपसी व्यवहार से संबंधित थी। कहता है, जो कोई चोरी करता है वह उसकी एक ओर लिखे हुए के अनुसार मैल के समान निकाल दिया जाएगा। यह मनुष्य के आपसी व्यवहार के संदर्भ में है। यह भजन संहिता 50 में स्पष्ट है। कहता है, जब तूने चोर को देखा तब उसकी संगति से प्रसन्न हुआ। कहने का अर्थ है कि तू चोरी मत कर, और पर स्त्री गामियों के साथ भागी भी हुआ, अर्थात तू वे विचार मत कर। तूने अपना मुंह बुराई करने के लिए खोला और तेरी जीभ छल की बातें गढ़ती है। तू बैठा हुआ अपने भाई के विरुद्ध में बोलता और अपने सगे भाई की चुगली करता है, अर्थात तू झूठी गवाही मत दे। यह काम तूने किया है और मैं चुप रहा, इसलिए तूने समझ लिया कि परमेश्वर बिल्कुल मेरे समान है। परंतु मैं तुझे समझाऊंगा और तेरी आंखों के सामने सब कुछ अलग अलग दिखाऊंगा। मेरे मित्रों, इसे आप भजन संहिता 50 उसके 18 से 21 पद में पढ़ सकते हैं। आप समय निकाल करके इसे अवश्य पढ़ें, क्योंकि उस युग में मनुष्य 10 आज्ञाओं में से किसी भी आज्ञा के तोड़ने पर दंड नहीं पाता था। इसलिए उन्होंने सोचा कि परमेश्वर उनके पाप के लिए कुछ भी नहीं करेगा। परंतु परमेश्वर कहता है कि वह कुछ तो अवश्य करेगा। मेरे प्रियो, इसराइल को मूसा की व्यवस्था दी गई थी और वही उस देश का संविधान था। उन्हें व्यवस्था का पालन करना था। उन्होंने व्यवस्था का पालन नहीं किया तो परमेश्वर ने उन्हें अन्य जातियों में तीतर वितर कर दिया और उन्होंने अन्य जातियों में मूसा की व्यवस्था को फैलाया। सभ्यता की पहचान परमेश्वर की वे आज्ञाएं हैं जो मनुष्यों के पारस्परिक संबंधों के विषय में हैं। मेरे मित्रों, मैं यहां आपको व्यवस्था से संबंधित, विशेष करके 10 आज्ञाओं से संबंधित एक सिद्धांत बताना चाहता हूं। परमेश्वर ने इसराइल को 10 आज्ञाएं दी थी और वे उन्हें अपने साथ हर जगह ले जाते थे। मिस्र पर भी उनका महान प्रभाव पड़ा था। अशुर देश और बेबीलोन में भी उनका प्रभाव पड़ा था। यूनानी राज्य और रोमी राज्य पर भी उनका प्रभाव पड़ा था। आप कुछ भी कहें, संसार की महान सभ्यताओं में ये नियम आधारभूत रहे हैं। तू हत्या न कर, अर्थात तू हत्या मत कर, तू चोरी मत कर, तू झूठी गवाही मत देना, तू व्यभिचार न करना आदि, सब किसी भी राष्ट्र के लिए आधारभूत नियम हैं। वे परिवार बनाते हैं, जीवन बनाते हैं, सभ्यता बनाते हैं। आज समाज ने इनका त्याग कर दिया है और हम भी वहीं पर पहुंच चुके हैं जहां पहले इसराइल था। इसराइल के उदाहरण के द्वारा परमेश्वर कहता है, यद्यपि मैंने इसराइल को चुना है, मैं हर एक मनुष्य को जो मेरी आज्ञा नहीं मानता है मैं उसे दंड दूंगा। अतः यह उड़ता हुआ पत्र संपूर्ण संसार के लिए परमेश्वर के न्याय का प्रतीक है। और रोचक बात तो यह है कि व्यवस्था की गलती निकालना असंभव है। जी हां, परमेश्वर कहता है कि हर एक जो मेरी आज्ञा नहीं मानता है मैं उसे दंड दूंगा। मेरे श्रोता मित्रों, मैं नहीं जानता कि आप परमेश्वर की आज्ञा को मानते हैं या नहीं। मैं यह भी नहीं जानता कि आप परमेश्वर के वचन को भी जानते हैं या नहीं। परंतु परमेश्वर इस बात को स्पष्ट करता है कि जो कोई भी उसकी आज्ञा को नहीं मानता है वह उसे अवश्य ही दंड देगा, चाहे वे कोई भी क्यों ना हो। वह साफ साफ कहता है कि चोरी ना करना, हत्या ना करना, व्यभिचार ना करना, झूठी गवाही ना देना, प्रलोभन ना करना, ये सारी बातें परमेश्वर की आज्ञा हैं। यदि आप इन सब का पालन नहीं कर रहे हैं तो निश्चय जानिए कि दंड आपके आसपास है। परंतु एक अवसर आपके पास है, यदि आप इन सब से बचना चाहते हैं तो परमेश्वर के निकट आ जाइए, क्योंकि परमेश्वर ने हमें बचाने के लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस जगत में भेजा, मनुष्य के रूप में भेजा, ताकि वह हमारे बीच में रहकर, हमारे मध्य में रहकर, हमारे जैसा जीवन जीकर परमेश्वर की उस पवित्रता को हमें दिखाए। उसने सारे मानव जाति के पापों को अपने ऊपर ले लिया। जी हाँ, उसमें से वह आपके पापों को भी वह अपने ऊपर ले लिया। आपके बदले में उसने कोड़ों की मार सही है, आपके बदले में उन्होंने कांटों का ताज पहना है और क्रूस पर बलि हो गए हैं। उस पवित्र लहू के बहे जाने के द्वारा उसने आपके पापों की कीमत चुका दी है, और इसलिए आपको कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ उसके निकटता में आना है और उससे कहना है कि प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरे पापों को अपने ऊपर ले लिया है, मुझे बचा लिया है, मुझे क्षमा कीजिए, मेरे जीवन को शुद्ध कीजिए और मुझे नया व्यक्ति बना दीजिए। निश्चय जाने कि परमेश्वर आपकी इस प्रार्थना को सुनना चाहते हैं और आपके जीवन में कार्य करना चाहते हैं। मेरे श्रोता मित्रों, अभी तक आपने जो कुछ भी पाप किए हैं, चाहे छोटी हो या बड़ी हो, परमेश्वर अभी भी आपसे प्रेम करता है और चाहता है कि आप उसकी ओर लौट आएं। मेरे प्रियो, यहां पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है। मुझे आशा है कि आज की इस अध्ययन के द्वारा आपने अपने जीवन में परमेश्वर के आशीषों को प्राप्त किया है। आप एक सही निर्णय अपने जीवन के लिए लेंगे और सही कदम उठाएंगे जिससे आपके जीवन परमेश्वर के निकटता में बने रहें। प्रभु आप सबके साथ हो और आप सबकी सहायता करें।
अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम सत्य वचन। हमें विश्वास है कि आज का ये अध्ययन आपके आध्यात्मिक जीवन के लिए फायदेमंद सिद्ध हुआ है। हम आपसे जानना चाहेंगे कि इस अध्ययन से आपको और क्या क्या आशीष मिली हैं। हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आपको देने के लिए हमारे पास नया नियम एवं पूरी बाइबल उपलब्ध है। यदि आप इसे प्राप्त करना चाहते हैं तो हमें इस पते पर लिखें, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। पता एक बार फिर से सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्यवचन, TWR इंडिया, पोस्ट बॉक्स नंबर 317, लखनऊ 226001, उत्तर प्रदेश। आप इस नंबर पर हमें SMS या टेलीफोन भी कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। एक बार फिर से सुन लीजिए, हमारा मोबाइल नंबर है 9198210018। नोट करें हमारा एक और मोबाइल नंबर 09651433397, 09651433397। इसके अलावा आप हमें ईमेल भी भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। और अब इसी के साथ कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, प्रभु आपको आशीष दे।
मुझको इतना प्यार दिया, तू इतना अच्छा।